अब आगे तो एक और ही क्लास है, आयत 67 से 72, रुकू नंबर 15, आयत 67 टू 72, मोमिनीन और मुनाफिकीन की सिफात। यानी अब यहाँ अल्लाह ने ख़ास तौर पे दोनों किरदार खोलकर दिखाए, और भी तस्वीर वाजे हो जाएगी। वो एंटीने का रुख सीधा कर देते थे ना लोग, तो तस्वीर बड़ी अच्छी आने लग जाती थी। यहाँ मुनाफिकीन और मोमिनीन दोनों की सिफात साथ साथ। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक ही हैं, लाइक माइंडेड, लिव टुगेदर। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं, 1 2 3 करके अभी गिनना शुरू कर दें, और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। याद रखिए, मुनाफिक को अपने माल से बड़ा प्यार होता है, जान से भी नहीं इतना, माल से। वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। और ये अल्लाह को भूल गए हैं, और इन्हें अल्लाह ने बुला दिया, बैठो तुम, मैं भी नहीं तुम्हें याद करता। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों औरतों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। वही इन्हें काफ़ी है, और इन पर अल्लाह की फिटकार है, और इन्हीं के लिए हमेशा का अजाब है। मिसल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, वो तुमसे ज़्यादा कुव्वत वाले थे और ज़्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया। जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदा मंद हुए थे, और तुमने भी इसी तरह मजाकाना बहसें की जिस तरह के उन्होंने की। यानी वो तो दुनिया से चले गए और तुम जाने वाले हो। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। क्या इन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदयन और अहले मोतफिकात, यानी उल्टी हुई बस्तियाँ, मुराद कौम लूत है, अहले मोतफिकात की। इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे, अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर खुद ही जुल्म किया। इसके बरक्स अलमोमिनीन वलमोमिनात, मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ों की पाबंदी बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और इसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा फरमाया, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं, और इन साफ सुथरे पाकीज़ा महल्लात का, जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में हैं। और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, नोट कीजिएगा, रिदवान अल्लाह ही अकबर, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। क्या पता चला कि दो तरह के गिरोह हर मुआशरे में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इधर जो सिनेरियो चल रहा है वो मुनाफिकीन का, पीछे चूंकि उन्हीं की बातें थी तो अल्लाह ने यहाँ औरतों और मर्दों का अलग से जिक्र किया। आप देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में सीगे तगलीब के तहत औरतें भी शामिल हैं। ये एक जुमला याद करें, यहाँ सिर्फ मुनाफिकून भी कह दिया जाता तो औरतें आ जानी थी, लेकिन यहाँ औरतों का अलग तذکرہ करके औरतों की खुशफहमी निकाल दी, कि ये ना सोचना कि निफाक का मर सिर्फ मर्दों में होता है। तो जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी आयत आए, तो मुझे किसी को नहीं सोचना, खुद को। हम अपने ससुरालियों को सोचें, हम अपने ओपोनेंट्स को सोचें, नहीं, जब भी निफाक की बातें हैं ना, तो अपने बारे में सोचिए। और अल्लाह पिछली कौमों के तذکرے आपको मुझे क्यों बता रहा है, कि अपने आप को देखिए। और निफाक का जो सिरा बंधा हुआ है ना, वो क्या है? हक के तकाजों को कम और माल और औलाद के तकाजों को ज़्यादा अहमियत देना। ये सारा सेशन आपको 28 पारे में बहुत डिटेल से मिलेगा। हर जगह ला तुल ही कुम अम्वाल कुम अला औलाद कुम आएगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मुनाफिक भी ज़ाहरी तौर पे बिल्कुल मुसलमानों जैसा दिखता है। इसके जीने के तौर तरीके बज़ाहिर वैसे ही होते हैं जो दुनियादारों के होते हैं। नुमाइशी अमाल को छोड़कर हकीकी ज़िंदगी में ये बिल्कुल आम तौर पे सीधा साधा इंसान दिखता है। एक मुनाफिक की दिल की दिलचस्पियाँ, उसकी रुझान और उसकी ख्वाहिशात दुनियादारों से वाबस्ता होती हैं। आखरत के बारे में खर्च करना, यदि आखरत की मद में खर्च करने से इसका दिल तंग होता है। हाँ, बेफ़ायदा दुनियावी मशागिल में खर्च करना हो तो बढ़ चढ़ के खर्च करता है। जहाँ एक लगता हो वहाँ 10 लगा दो, क्योंकि कमाते किस लिए, और कहाँ खर्च करेंगे और कब खर्च करेंगे। हक की बात आए कि इस्लाम और हक और दीन पे खर्च करो, तो कहते हैं क्या ज़रूरत है, जब है ही नहीं तो लगाने की क्या ज़रूरत है। जब इस्लाम के और हक के नशर व इशात और फ़रोग़ की और उसको आगे से आगे बात की जाए, कहते कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ये शौक़ ही नहीं है। तो ज़ाहरी दीनदारी के बावजूद ऐसा शख्स अल्लाह और आखरत को इस तरह भुला रहता है जैसे उसकी नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत ही ना हो। याद रखिए कि ऐसे लोग ज़ाहरी इस्लाम की बिना पर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। अल्लाह ने यहाँ दुनिया की लानत की भी बात कर दी और आखरत के अजाब की भी। दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम और आखरत में भी होंगे, फिर क्या करें, फिक्र तो लगनी है ना। मुझे तो अपनी लगती है, अल्लाह आपको भी लगे आपकी। आप अल्लाह के साथ मुकम्मल तौर पर नत्थी हो जाएं। आप कोई चीज़ें एक्स्ट्रा रखते हैं ना, वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। आप अपनी कॉपियों में कवर्स में देखिए, कोई चीज़ ऊपर से लगती है, कुछ दिन बाद तो कागज़ उखड़ने लगता है, और जो चीज़ बाइंडिंग में जिल्द में नत्थी हो जाती है ना, वो नहीं जाती। इस्लाम के साथ नत्थी हो जाए, बाइंडिंग बाइंडिंग जिल्द करना होता है ना, अल्लाह के साथ मुकम्मल तौर पर नत्थी हो जाए, और ये कामिल वाबस्तगी के बगैर मुमकिन ही नहीं। अधूरे दिल से दीन की कोशिशें कामयाब नहीं होती। आधे तीतर आधे बटेर वाले बड़ी जल्दी निफाक की तरफ पहुंचते हैं। तो 100% दीजिए, आधा नहीं, अधूरा नहीं। आधा पौना दीन अल्लाह को नहीं चाहिए, मेरा पूरा आपका आधा दौरे कुरान, आधा पौना अल्लाह को नहीं चाहिए, आपकी मेरी आधी पौनी इताअत अल्लाह को नहीं चाहिए। ऐसे लोग आखरत में अपने सारे अमाल रखने के बावजूद इस तरह बेकीमत हो जाएंगे जैसे रूह के बगैर कोई जिस्म, बाहर देखने में जिस्म होता है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं रहती। कभी किसी ने किसी डेड बॉडी की कीमत दी, लाश को कोई खरीदता? रोने वाले तड़पने वाले पास बैठे हैं, आप कहते हैं कि खरीद लो, बड़ा प्यार है ना बेटे से, इसकी डेड बॉडी को खरीद लो, वो सारे अपने खजाने दे दो। क्या करेगा उसकी डेड बॉडी को, ये सिर्फ अल्लाह खरीदता है, आगे आयत आने वाली है। और आगे आप देखते हैं कि मोमिनीन की तस्करे हैं, जो आप जैसे प्यारे खूबसूरत लोग जिनको अल्लाह के दीन से इतनी मोहब्बत है कि अपना तन मन धन लगा कर बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की सारी खूबियाँ मुनाफिकीन से ऑपोजिट हैं। खुद को भी जान लें, आईने में चेहरा देखें, आपको एक एक दाग धब्बा दिख जाएगा और आप समझ जाएंगे कि इंशाल्लाह मेरे में निफाक नहीं है। अपनी गुफ्तगू को देखिए, अपने दिल को देखिए, अपने माल को खर्च करने को देखिए, अमर बिल मारूफ के लिए लगाते हैं या अमर बिल मुनकर के लिए लगाते हैं, अल्लाह से दिल जुड़ा हुआ है कि नहीं, फिक्रे आखरत है कि नहीं। दुनिया की चीज़ों से सिर्फ ज़रूरत का ताल्लुक, मकसद अल्लाह के दीन की सरफराजी। औलाद, माल, घर, जिम्मेदारियाँ, चौ देखने चुनने वाली चीज़ें नहीं, हम मालिक नहीं हैं इनके, हम सिर्फ जिम्मेदार हैं, हम राई हैं। कुल्लुकुम रायुन, बुराई के काम वाली जगह पे जाकर दिल उठता है, तबीयत उचाट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनकी ज़िंदगी और इनका सारा सासा, सारे एसेट्स सबसे ज़्यादा अल्लाह के लिए होते हैं, ना कि अपने लिए, ना बच्चों और बच्चों के लिए छोड़ते हैं। सब दे दिया, खिला दिया, पिला दिया, शादियाँ कर दी, घर बना दिए, अब तो अल्लाह को दे दो, फिर भी नहीं हौसला बढ़ता। ऐसे नहीं होते ये लोग, और ये लोग अल्लाह की याद करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, और चूंकि इनका कॉमन कॉज एक है तो ये आपस में जुड़ते हैं, बादहुम इलाबाद, एक दूसरे के कुर्बत है। सबकी डोरी अल्लाह की तरफ बांधी होती है, सबकी दौड़ अल्लाह की तरफ होती है, सबकी इताअत का मरकज़ अल्लाह के नबी होते हैं। जब ये मिलते हैं तो लाइक माइंडेड, बाहमी दिलचस्पियाँ एक हैं, कभी तरावियों में मिल रहे, कभी दौरे कुरान में मिल रहे, कभी वो किसी और जगह मिल रहे, कभी इफ्तारियों में मिल रहे, हर जगह देखकर एक दूसरे को खिल जाते हैं, फिर एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर आपस के ताल्लुकात होते हैं, फिर इनसे एक दूसरे को एनर्जी मिलती है, और वो एक मैग्नेट और लोहे चून की मिसाल देख लीजिए, जिसमें कम खूबी थी ना, वक्त के साथ वो भी खूबी वाला बनता है। आप देखिए कि टीम में छक्का एक लगातार जीत सारी टीम की होती है। हर साल शायद जावेद मियांदाद का नाम लेती हूँ, दुबई वर्ल्ड कप में 1996 में, तो जीत तो पूरी कौम की हुई ना। आप में से हर एक की खूबियाँ अलग हैं, याद रखिए एक टीम में सारे एक जितना काम नहीं करते और सारे एक काम भी नहीं करते, और इसकी ज़रूरत भी नहीं और ये मुमकिन नहीं। ये पांच उंगलियाँ, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको इसको, अब ये कभी लड़ी? तुम छोटी, तुम काम नहीं करती, वो कहता है तुम तो मुड़े हुए हो, या कहता है मैं देखो सबसे बड़ा हूँ, लेकिन एक हाथ से मिलके बड़े बड़े काम करते हैं। वमा रमई तेज रमई तबला कि नल्ला रमा, तो एक टीम जो होती है ना उसमें कभी किसी के साथ तानो तिश्नी नहीं होती, वो एक दूसरे को हमेशा कवर करते हैं, पीछे से हाथ काट दें उंगलियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो मोमिनों के दिल आपस में, और ये जो हथेली है ना ये मकसद है, ये छोटी है ना कोई बात नहीं मेरे साथ है। आप देखिए ये छोटी उंगली काट दें आपके कितने काम नहीं होंगे, बल्कि इस पर आज गौर कीजिएगा किचन में, कभी छुरी पकड़ी है इस उंगली को छोड़कर इसको छोड़कर इसको, आप देखिएगा क्या होता है उस दिन। तो एक दूसरे की फिर साथियों की कदर कीजिए, टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। सारे आप जैसे हो गए तो फिर तो बेकार है, अब सारी उंगलियां बराबर कर दीजिए ये छोटी उंगली के बेकार, या सबको खींच खूंच के बड़ा कर दें तो भी बेकार है। तो ये फितरत का असूल था कि आपके साथ कुछ निकम्मे लगने थे, कुछ कम कम्मे लगने थे, कुछ ज़्यादा कम्मे हैं। अगर आप बीच वाली उंगली हैं तो आप क्यों फख्र करती हैं, आप सारी चारों उंगलियां अपने इर्द गिर्द से काट दीजिए तो आप अकेली क्या करेंगी। तो टीम वर्क में मोहब्बत और ये सब कुछ, और उसके बाद फिर जो आपको ज़िंदगी मिलेगी ना मकसद के साथ, गोल होते हैं ना जैसे खिलाड़ी फुटबॉल में बॉल को अपना गोल बना के उसके इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं, आप उसी मैदान में एक और बॉल डाल दें तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। एक बॉल के जितना लड़ रहे हैं कि एक वो छोटी सी जगह में घुसा रहे हैं, एक और गोल डाल दो। ये है टीम विद इन टीम, ग्रुप विद इन ग्रुप, कभी कामयाब नहीं होगा। कुछ मेरा है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा अपना है, ये मेरा उधर का है, ये काम तो मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं कर रही, ये तो नहीं आप नहीं करेंगे, मैं आपको भी बता रही हूँ, आप कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे। हाँ फिर या तो आप अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, खुल के सामने आइए, जो है वो बनिए। मोहब्बत का इजहार क्यों फिर करते हैं, फिर आप गिला क्यों करते हैं, फिर आप शिकवा क्यों करते हैं। तो यहाँ एक पूरी टीम की खूबियाँ अल्लाह ने बताकर बता दिया कि जब ये सब कर लोगे ना तो उसके बाद फिर अल्लाह ने तुम्हें जो देना है ना वो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। फिर वो ज़िंदगी तुम्हें जो मिलेगी उसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपने लिए अमल के रवैये नोट कर लेते हैं। निफाक से बचना है, मोमिनों पर अल्लाह की रहमत होती है इसलिए ईमान लाना है, नेकी का हुक्म देना है, नमाज कायम करके ज़कात देनी है और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, और ईमान वालों के मददगार बनना है, बुराई से रोकना है। रुकू नंबर 16 आयत 73 से 80, जिहाद फी सबीलिल्लाह की हकीकत क्या है। या यूहन्नबी युजाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद जारी रखिए और इन पर सख्त हो जाइए, इनकी असली जगह दोजख है जो नहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, हालांकि कलमा कुफर यकीनन इनकी ज़ुबान से निकल चुका है, और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर भी हो चुके, और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा न कर सके। हम मुँह भी मालम या फलू, यानी नबी के कत्ल का इरादा था उसकी तरफ इशारा इसमें, और ये सिर्फ इस बात का इंतकाम ले रहे हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से और इसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया। अगर ये अब भी तौबा कर लें तो ये इनके हक में बेहतर है, अगर ये मुँह मोड़े रहें तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब देगा, और ज़मीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार खड़ा न होगा। इनमें वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम ज़रूर सदका व खैरात करेंगे और पक्की तरह नेकुकारों में हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिया तो ये इसमें बखीली करने लगे और टाल मटोल करके मुँह मोड़ लिया, बस इसकी सज़ा में अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे के खिलाफ किया और क्योंकि वो झूठ बोलते रहे। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला को इनके दिल के भेद और इनकी सरगोशी सब मालूम है, और अल्लाह ताला गैब की तमाम बातों से खबरदार है। जो लोग इन मुसलमानों पर ताना जनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, और इन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनत और मजदूरी के और कुछ मुयस्सर ही नहीं, बस जो इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनसे तमस्खुर करता है यानी इनका मजाक करता है, इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। इनके लिए आप इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करें तो भी अल्लाह इन्हें हरगिज़ न बख्शेगा, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से कुफ्र किया। ऐसे फासिक लोगों को रब्बे करीम हिदायत नहीं देता। इसमें भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ और क्या कुछ है। अब देखिए कि दुनिया में जो मुख्तलिफ लोग हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको जो नेमतें दी होती हैं ना उनको पाकर कुछ लोग तो अपनी ज़ात में खो जाते हैं, कुछ उन नेमतों को पाकर अल्लाह ताला की रज़ा पाना चाहते हैं। पीछे हमने देखा कि जो अपनी सारी ज़िंदगी अच्छी करेंगे अल्लाह उनको क्या देगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हमेशा की जन्नतें जिसमें नहरें बहती होंगी और पाकीज़ा कर देंगे जन्नत अदन के, और सबसे बड़ी बात रिदवान मिन अल्लाह अकबर, और साथ ही कहा हुआ ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अब जब आप ये सारा खूबसूरत मंजर पढ़ते हैं तो दिल में क्या आता है कि हम जन्नत में कब जाएंगे? जन्नत आपके लिए एक ख्वाब बन जाती है, एक गोल बन जाता है, एक ड्रीम बन जाते हैं, और दुनिया में ईमान वालों की ज़िंदगी इनकी आखिरत की ज़िंदगी की एक छोटी सी तस्वीर बन जाती है। दुनिया में ईमान वाले ऐसे रहते हैं, बिल्कुल अपने ऊपर लेकर सोचिए, अहले ईमान किस तरह जीते हैं? जैसे एक बाग में बहुत से खूबसूरत दरख्त खड़े हों और एक दूसरे के हुस्न में इजाफा कर रहे हैं, और उनको एक दूसरे से एनर्जी मिलती है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर ख्वाह होता है, पुरसकून माहौल होता है, और एक रब्बानी कैफियत उन पर तारी होती है। ऐसे लोग जब जन्नत में जाएंगे तो उनको कुछ मुख्तलिफ नहीं लगेगा। लिखिए यहाँ इमाम इब्ने तैमिया का वो जुमला कि आखिरत की जन्नत में जाने से पहले इस दुनिया की जन्नत से गुजरना पड़ता है। मोमिन की दुनिया की ज़िंदगी भी पुरसकून, पॉजिटिव एनर्जी वाली, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाली होती है। अब यहाँ जो नबी सल्लम को मुनाफिकीन और कुफार के साथ जिहाद की बातें कर दी, इससे पता चलता है कि जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता, क्योंकि मुनाफिकीन पे अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी में कहीं भी तलवार नहीं उठाई। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक दीनी गैरत की वजह से कई बार कहा करते थे, और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में, कि अल्लाह के नबी इजाज़त दीजिए मैं इस काफिर के अल्लाह के दुश्मन की गर्दन को काट दूँ, तो आपने कहा कि नहीं। लोग अभी नए नए दीन पे आ रहे हैं, वो सोचेंगे मोहम्मद अपने साथियों को मरवा देते हैं। इससे पता चलता है कि जिहाद ज़ुबान से भी है और अमल के साथ भी है और शिद्दत इख्तसाब भी है। काफिर के साथ तो तलवार चलेगी, लेकिन मुनाफिक के साथ जिहाद ज़ुबान से, आपके तर्ज अमल से और एहतसाब के ज़रिए होगा। इब्ने अब्बास की भी इसमें एक रिवायत आती है कि मुनाफिकीन के मुकाबले में जिहाद बिसैफ से ज़्यादा जिहाद बिल लिसान और जजरो तो भी है, तखलीस भी है, शिद्दत बरती जाएगी, क्योंकि मुनाफिक को झटके देने की ज़रूरत होती है। अभी अंदर ईमान तो है ना थोड़ा बहुत, वरना तो ये भी फंदा उतार कर फेंक दे तो कभी किसी को मुनाफिक ना कहे। अब सवाल ये कि अब आपने आज इतना निफाक पे पढ़ा, जाके फतवे दे दें फलां मुनाफिक, फलां चूँकि असर की नमाज़ नहीं पढ़ता तो मुनाफिक, फलां ऐसा, कभी भी नहीं। ये ज़ुबान नबूवत से नाम आ रहे थे, तकरीबन 70 से 80 लोगों के नाम अल्लाह के नबी ने हज़रत खुज़ैफ़ा बिन जमान को बता दिए तबूक से वापसी पे, और वो लोग थे जिन्होंने नबी पे हमला करना चाहा, जिसका भी आयत में तذکرہ भी पड़ा है, हम बिमालम ये नालू था। क्या पता चला कि जिन्होंने कत्ल की कोशिश की थी बच गए, अल्लाह के नबी आपने उनके नाम में एक सहाबी को दिया, और हज़रत खुज़ैफ़ा को कहा दूसरों को ना बताना। उन्होंने अपनी डेथ तक नहीं बताए लोगों को, और बाद में आता है कि कई लोग उनसे आके पूछा करते थे कि बताओ ये ठीक है कि नहीं, मेरा नाम तो नहीं उसमें। 70 के करीब सहाबा और सहाबियात को अपने ऊपर निफाक का शायबा था, आप और मैं क्या कहें। फिर इसमें किरदार है 75-76 में, इसमें एक सहाबी का नाम आता है सालवा, इसको काट दीजिए, ये सहाबा की दुश्मनी में बात है। तफसीर में जो वाक़या सालवा के नाम से आपने कभी कहीं पढ़ा है उसको काट दीजिए, ये किरदार है बस। अपने अंदर झांकिए, हाय कुछ पैसे मिल जाएं तो ये कर दूं, हाय मेरा घर बड़ा हो जाए मैं अल्लाह के नाम पे डाल दूं, हाय ये मैं इस पर अक्सर एक एक्टिविटी कराती हूँ। अगर आपको 1 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए तो क्या करेंगी? असल में जो नहीं होता ना हम उसकी बड़ी ख्वाहिशें करते हैं, और जो होता है उसको नहीं रखते। इस पूरे वाक़े में जो सबसे बड़ी चीज़ है, निफाक सज़ा है अल्लाह के हस्ते से रोक लेने की। अल्लाह कहते हैं मैंने उसके पीछे लगा दिया निफाक क़यामत तक के लिए। जितना अल्लाह के रास्ते से बचा बचा के रखेंगे, जान को, माल को, वक्त को और नेमतों को और स्किल्स को, वो आपके दिल में निफाक को भरने के लिए काफ़ी होगी। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से अगर कोई वादा करें तो पूरा कर दे, फ़ौरन कर दे, नज़र मानते हैं ना कर दिया करें। फरमाए होना तो कुछ नहीं उससे, हाँ बखील से कुछ माल निकलवा लिया जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें, ये हो गया तो ये कर देंगे, ज़रा मेरा ये काम हो जाए तो वो कर दूंगी, बस अभी तो हाथ तंग है बाद में हो जाएगा, आप नहीं करेंगे अगर आपने अभी नहीं किया। इसलिए जो है थोड़ा है कि ज़्यादा, अच्छा है कि बुरा, अल्लाह को कह दे अल्लाह आपका है, फिर अल्लाह वो उसके बाद जो बड़ा देगा, अच्छा देगा और बेहतर देगा, वो आपको जब नसीब होगा आपके सामने आएगा। और यहाँ बैठकर कोई अच्छी सी दुआ करें। इसके बाद अब आप देखेंगे कि पारे की बिल्कुल एंड की तरफ जाने के लिए आखिरी टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो गज़वे तबूक की गर्मी और उससे अराउंड की जो चीज़ें हैं। हम यहाँ पहले अपने अमल के नुक्ते नोट कर लेते हैं। रज़ा इलाही को पाने के, जिहाद करना, मुनकरीन और मुशरिकीन से सख्ती से पेश आना, तौबा करना, झूठ नहीं बोलना, अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, बुखल और निफाक से बचना और सदका करना है और दिल की खुशी से करना है। आगे है जी रुकू नंबर 17, आयत नंबर 81 से 89, आजमाइशें और इनाम साथ साथ। फरिहल मुखल्लफून अभी मक़ैदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठ रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा और उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए कि दोजख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि वो समझते होते। बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसें और बहुत ज़्यादा रोएं। आज क्या कल्चर है? फन, फ्रॉलिक, बोर हो रहा हूँ, मामा मैं क्या करूँ, दिल नहीं लग रहा। मोमिन के पास बोर होने का टाइम ही नहीं है। काम में लग जाइए, अल्लाह के और अपने कामों में लगे रहिए, कभी बोर नहीं होंगे। और बोरियत का दूसरा नाम डिप्रेशन है। वर्स्ट सिनेरियो ऑफ बोरियत, बिग पिक्चर में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। फरमाया क्यों रोएं? बदले में इसके जो करते थे, अपने करतूतों पर रो। अल्लाह को क्यों बुरा कहते हो? कभी अपने करतूत तो देखो। बस अगर अल्लाह ताला आपको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाज़त तलब करें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ अब नहीं चल सकते और न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहली ही मरतबा बैठ रहने को पसंद किया था, बस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। तशरीफ़ फरमाइए इधर, आपकी अब इस्लाम को ज़रूरत नहीं है। क्यों भला? क्योंकि आप दुख में काम नहीं आए, आपने इस्लाम के तकलीफ़ वाले दिनों में साथ नहीं दिया, अब खुशियों में इस्लाम बहुत खुश है आपके बगैर ही। ज़िंदगी का असूल बनाइए, जो शख्स आपको दुख में, तकलीफ़ में, आपकी ज़रूरत में तनहा छोड़ दे, आपका हाल भी ना पूछे, आपके ऊपर क्या गुजर रही है उसकी बला से, वो आपका अपना नहीं है, बस उसके साथ मुरब्बत का ताल्लुक रखें, अलग स्लैक रखें, सलाम दुआ करें, बुरा भला भी ना कहें, छोड़ दें उसको उसके हाल में, दिल के खाने से निकाल के बाहर रखिए। देखिए कुछ लोगों को आप अपने दिल में रखते हैं, प्यार होता है आपको दिल से, गहराई से होता है, क्योंकि आप उनको बड़ा कीमती समझते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, एक वाक़ा सुनाती हूँ। एक सुनार यानी सराफ था, लोग उसके पास माल लाते भी, देते भी, उधार भी लेते, कुछ भी करते। एक दफ़ा एक शख्स आया, एक सोने की टुकड़ी दी, कहने लगा ये रख के मुझे पैसे दे दीजिए, थोड़े दिन बाद आऊँगा, पैसे ले आऊँगा, चीज़ ले जाऊँगा। उसने कहा ठीक है ले लीजिए। अपने एक वर्कर को बोला कि ये सोने की डली अंदर लॉकर में रख दो, और उसको पैसे दे दिए। जब वक्त मुकर्रर आई वो बंदा नहीं आया, कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, आगे पीछे 19-20 तो चलती है, नो प्रॉब्लम, फ्लैक्सीबल रहो। कुछ और अर्सा गुजरा, नहीं आया। एक दिन इस बुज़ुर्ग को पैसों की ज़रूरत पड़ी, कहने लगा कोई बात नहीं, नहीं आया तो ना सही, मैं सोने की डली बेच लेता हूँ, बात बराबर। कहा लाओ वो निकाल के, जाओ सुनार के पास और जाओ इसको बेच के आओ। जब वो सुनार के पास गई, उसने कहा ये सोना थोड़ी, ये तो पीतल भी नहीं, सोने का पानी है। अब ज़रा सा आगे कान लगा के सुनिएगा, क्या करता वो? मुकदमा, उसको लान तान, उसको बुरा भला, नहीं कुछ भी नहीं कहा। कहने लगा छोटे इधर आ, इस डल्ली को अब लॉकर में वापस नहीं रखना, ला के ना इसको ये शीशे के जो केस है ना इसमें से जा दे, बस ये करिए, ये हो जाता है खुद ही। कुछ लोगों को आप अपने दिल के ही सुंदर के आए खाने ना अपने उसमें रखा होता है, आपके दिल की धड़कनों में उनके लिए दुआएं और अच्छे जज्बात होते हैं, बट वो प्रूफ नहीं कर पाते। आप उनको वहाँ से निकाल के ना सजा दें, बस दर के ताल्लुक नहीं, लेकिन बस उनको दिल के लॉकर से निकाल दें, बस फिर वो आपके लिए इतने अहम नहीं रह गए। मुनाफिक हो ना हो, सुस्त बंदा, केयरलेस बंदा कभी कभी अपनी हरकतों की वजह से इस मुकाम पे आता है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुख्सतें ले लेता है कि हमें तो बैठ रहने वालों में ही छोड़ दीजिए। सोचिए ज़रा, ये तो खाना बदोश यानी खाना नशीन घरों में रहने वाली औरतों को कहते हैं, ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रीझ गए और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, अब वो कुछ समझ अकल नहीं रखते। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, यानी फिर वो जो खुद कर सकते हैं वो खुद ही कर लेते हैं। और दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, रिलाय नहीं करना चाहिए। एक जुमला हमने बहुत अपने बड़ों से सुना, अपना काम खुद करना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा तजुर्बा होता है तो आप खून के घूंट भी पी लेते हैं और आप देखते हैं आप वो काम कर सकते हैं। इतना नहीं, इज्जत मिली होती है हमें कभी कभी किसी काम के करने की, और हमें शायद वो रास नहीं आती। कहा छोड़ दो इनको, इन्होंने जाके भी कर क्या लेना था, और जैसा आपने करना है वैसा ये नहीं भी कर सकते। इन बेचारों की पूरे इखलास के बावजूद इतनी अप्रोच ही नहीं है। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं। और ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अब इन आयात में, आयत 84 में ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन उबई की मौत का तذکرہ है। इस पे एक शान नज़ुल का किस्सा सुन लीजिए। बुखारी की रिवायत है 1269, जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की मौत हुई तो इसका बेटा, जिनका नाम भी अब्दुल्ला ही था, बड़े सच्चे साबित थे, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, वालिद के कफन के लिए आप अपनी कमीज़ इनायत फरमाइए और इन पर नमाज़ पढ़िए और मग़फ़रत की दुआ कीजिए। मुराद क्या था कि मेरे बाप की शायद बख्शिश हो जाए। देखिए, औलाद होने के नाते ख्वाहिश तो यही होती है ना। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, अपनी कमीज़ मुरव्वत की वजह से उतार के दी। वैसे भी अब्दुल्ला बिन उबई का एक एहसान था नबी पे। जब बदर के कैदियों में हज़रत अब्बास आए, जो आपके चचा थे, तो उनके जिस्म पे कमीज़ नहीं थी। अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया कि किसी का नाप अब्बास से है मिलता हुआ, क्योंकि चौड़े चकले थे। अब्दुल्ला बिन उबई का नाप उनका एक मिलता था। अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना एक कुर्ता उस वक्त कर्टसी में नबी के चचा को दिया था, उसका एहसान अल्लाह के नबी ने चुका दिया, ले जाओ, और फरमाया कि मुझे बताना, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा। अब्दुल्ला ने इत्तला भिजवाई। जब आप नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से पकड़ लिया और अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ताला ने आपको मुनाफिकीन की नमाज़े जनाजा पढ़ने से मना नहीं किया? आपने फरमाया, नहीं, मुझे तो इख्तियार दिया। सबीना मर्रा का लफ्ज़ है, ये तो कहीं नहीं, वो तो आगे आयत आएगी अभी, ला तुसल्ली का लफ्ज़ वहाँ है। कहा, नहीं, मुझे तो इख्तियार दिया गया है कि उनके लिए इस्तग़फ़ार करो या ना करो, और अगर आप 70 बार भी इस्तग़फ़ार करेंगे तो भी अल्लाह हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। क्या हमारा दिल इतना बड़ा है? आपकी बीवी पे तोहमत लगाने वालों में से भी ये शख्स था। लेकिन नबी की मोहब्बत देखिए कि किसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई भी बच जाए। हम कहते हैं किसी तरह अपने भी फंस जाएँ, और ख़ास तौर पर दूसरे फिरके, दूसरी जमात, दूसरे गिरोह, दूसरे प्लेटफॉर्म वाले तो सारे ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ मेरा नाम पूरे नक्शे पे रहे, पूरे यूट्यूब पे लोग सिर्फ मुझे सुने, पूरे फेसबुक पे सिर्फ मेरा नाम हो, सारा सोशल मीडिया मेरा, व्हाट्सएप सारा मेरी रिकॉर्डिंग चलाता फिरे। कभी नहीं होगा ऐसा। जब दिलों में ऐसा बुग़्ज़ होता है ना, तो जो थोड़ी बहुत खूबी होती है वो भी ख़त्म होती है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तो पढ़ाऊँगा। चुनाचे अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद फिर वो आयत नाजिल हुई कि किसी भी मुनाफिक की मौत पर इसकी नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना। आगे आए की आयत वही सूरत तौबा में। क्या पता चला आपको मुझे? इन सारी बातों को सुनते वक्त आपको एक बात तो समझ आ रही है ना, कि अल्लाह के नबी और सहाबा इंसान थे, और बिल्कुल वो जज्बात और वो जो हमारे इर्द गिर्द हमें चीज़ें दिख रही होती हैं ना, वो सारी की सारी इसमें दिख रही है। तो ये हिस्सा आपको मुझे क्या बताता है कि दिल का खोट जो आता है ना, वो दिख जाता है। फिर इसमें आपने देखा कि गर्मी सर्दी की कुछ बातें हुई। ग़ज़वे तबूक चूँकि बहुत गर्मी के मौसम में हुई थी, खड़ी फसलें थी और सहराओं की गर्मी, मदीना से चलकर शाम तक 300 मील जाना, ऊंट थोड़े, 18 लोगों को एक ऊंट दिया गया, 18 पीपल विल शेयर 1 कैमल, एक चल रहा है यानी एक ऊपर बैठा है तो बाकी चल रहे हैं, आफ्टर 17 पीपल यू विल गेट द टर्न। सुबहान अल्लाह। तो जिनके दिलों में खोट था उन्होंने क्या क्या ज़रूरत क्या है भाई, कोई दुश्मन आ गए? आज भी लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, सारे काम हम नहीं कर दें, पहले क्या हो गया था, वैसे क्या हो गया था, और ये ज़रूरत थी और वो क्या, बैठे रहे आप डिली डली। याद रखिए, दीन का कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आप कर सकते हैं, और आप सिर्फ अपने थोड़े हौसले या कम हिम्मतगी या वक्त की कमी के नाम पर नहीं करते, यू विल बी आंसरेबल। अल्लाह के नबी हमेशा आगे बढ़ते थे, आप असबाब को नहीं देखते थे, अल्लाह की मदद और ज़रूरत को देखते थे। अभी रोम से आया नहीं हिरकल, लेकिन अगर अल्लाह के नबी ये जुरत ना करते तो उसने आ जाना था। वो कहते हैं बारिश होगी तो फिर चप्पल डालोगे। जो लीडर होते हैं ना, उसको पहले सूझ जाना चाहिए, और सूझ जाता है कि आज ये काम कर लेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा होगा, कल ये मुश्किल होगा, आज ये आसान है फिर भी। लेकिन कुछ लोग फैसला करने में इतनी डिली डली और इतने इफ्स एंड बट्स, इतनी क्वेश्चनिंग, और इतनी उनके पास लंबी लिस्ट होती है दूसरों के ऊपर शक करने की, वो होते ही नहीं। बात अच्छी होती है उनकी लेकिन डिसीजन नहीं बना सकते। तो बी फास्ट बट केयरफुल डिसीजन मेकर, ये पैगाम है इसका। अब यहाँ जुमला एक नोट करवाऊंगी आपको, शायद कि आपके दिल में ये बात उतर जाए कि तेज गर्मी में उनको निकलने से रोक रहे हैं। भाई तुम क्यों रोक रहे हो, तुम नहीं जाओ। कहते नहीं, फिर हमारा बुरा लगेगा लोगों को। और ये हो गया, उनको ये समझ ही नहीं आया कि अल्लाह की पुकार सुनने के बाद किसी खतरे की बिना पे ना निकलना आपको शदीद दर खतरे में मुबतला कर देता है। इसको लिख लें, एक दफ़ा जब अल्लाह ने आपको पुकार लिया, आपको किसी नेकी का मौका मिल गया, आपसे अल्लाह ने कोई खैर का काम लेना था और आप नहीं करते, तो आप शदीद तर खतरे में मुबतला होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे धूप से भागकर आग के शोलों की पनाह ली जाए। कितनों के दिल में उतर गया ये जुमला, आज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्या कल के आग के शोले बर्दाश्त होंगे। तो पीछे पढ़ कर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, सूरह अनफाल की आयत है। कबूल करो उस दावत को, लब्बैक कहो जब अल्लाह तुम्हें पुकारे, रसूल तुम्हें पुकारे। उसमें एक दावत क्या थी, जिहाद की दावत थी, एक अमर बिल मारूफ और एक नहीं निल मुनकर की दावत थी। और याद रखिए, कुछ नेकियां बार बार आती हैं। मैं आपको एक मिजाज आज दे जाती हूँ, इस आयत पे बेस्ट होगा, समझ आ जाएगी। नमाज दिन में 5 बार पुकार आती है ना, छोड़नी तो एक भी नहीं है। लेकिन बिलफर्ज खुदा ना खास्ता फजर निकल गई सोते में, उड़ते ही पढ़ भी लिया आपने माशाल्लाह, थोड़ी देर बाद आप यू विल गेट अनदर चॉइस, एक और चांस आ गया, उस पे लब्बैक कह देंगे, अस्सलातु खैरु मिनन नौम के बाद। ठीक है, चलिए, आप नमाज दिन में 5 बार मौका पाते हैं। ज़कात की पुकार आपको हर साल आती है, बिल्कुल आती है। 2023 की नहीं दी थी तो दीजिए, 22 की चेक कीजिए, है ना। रोज़े साल में 30 या 29 दफ़ा पुकार आती है। कुछ नेकियां आपको बार बार आती हैं। हज कितनी दफ़ा ज़िंदगी में, एक बार। हज की पुकार एक दफ़ा कबूल कर ली, बच गई जान। इसी तरह कुछ नेकियां टाइम बाउंड होती हैं। अल्लाह के दीन और उसकी जिद्दोजहद और उसका बीज लगाने की पुकार बार बार नहीं आती। कुछ नेकियां सिर्फ वंस अपॉन ए टाइम आती हैं और ख़त्म। आप में से जो लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, उनको मेरी मिसाल समझ आएगी। आप बैठे हुए काम करें, एकदम कोई चीज़ पॉपअप होके आपके सामने आ जाती है। पॉपअप्स होते हैं, ऐसी फजूल स्पैम्स भी होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कोई सही भी है। एक दफ़ा क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक में आप थोड़ी देर नहीं करते, वो गायब हो जाता है। सेटर होते हैं, टाइमिंग होते हैं, आपके अलार्म लगे होते हैं, आपकी अजानों की सेटिंग्स ऐसी हुई होती हैं। कुछ नेकियां पॉपअप होती हैं। इफ़ यू विल क्लिक द माउस और उस पर जाकर टिक कर देते हैं, इट विल स्टे विद यू। और अगर आपने उसको एक दफ़ा छोड़ दिया, बाद में कहेंगे किधर गया। कभी आप YouTube पे कुछ सुन रहे हो ना, तो कोई ऐड आ जाता है, और कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई अच्छा आप देखना चाहें, दोबारा आपको पता ही नहीं कहाँ से आएगा। तो अल्लाह कहता है, गर्मी सर्दी को मत देखो, अपने असबाब को मत देखो। जो लोग अल्लाह के मुकाबले में अपने को और अपने माल को ज़्यादा महबूब रखते हैं, वो जब अपनी खूबसूरत तदबीरों से इसमें कामयाब हो जाते हैं कि वो मुसलमान भी बने रहें, और इसी के साथ इनकी ज़िंदगी और इनके माल को कोई ख़तरा लाहक ना हो, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और उन लोगों को वो बेवकूफ़ कहते हैं जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने आप को हिलकान किया होता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं, इनको बताओ, अन्नारु अशद्दु हर्रा, ये नादानी है, ये हंसना जिसका इंजाम रोने पे पूरा हो, क्या वो अच्छा होगा। देखिए, शादी वाला घर गम की दास्तान बन जाए, कोई चाहता है? तो लिखिए, ऐसी ज़िंदगी कि जिसमें खूब हंसे और इंजाम रोने पे हुआ, तो क्या पाया क्या खोया। मौत के बाद आने वाली दुनिया में इस किस्म की होशियारी सबसे बड़ी नादानी होगी। वहाँ इंसान अफसोस करेगा कि वो जन्नत का तलबगार था, मगर इसने अपने एसेट्स को, अपने असासे को अपनी ही जान पे और अपनी ही जात पे लगा दिया, और उसके लिए पे ना किया जो जन्नत की वाहत कीमत थी। मुनाफिक हमेशा अपनी सिक्योरिटीज लेकर आता है, उसके तहफ़ुज़ात होते हैं, बड़ी सिक्योर पॉलिसी होती है मुनाफिक की। वो वो अपने इर्द गिर्द माल और इज्जत और शोहरत के खूब असबाब जमा कर लेता है ताकि लोग उससे मरूब हों और उनकी शानदार जिंदगी। आगे सूरह मुनाफिकून पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह 28वें पारे में। ऐसे लगता है कि खून नुचुड़ जाता है बंदे का। खूबसूरत बातें, जिस्म प्यारे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके जिस्म कैसे हैं, खुशबू मुसन्नदा, सजी हुई लकड़ियाँ जो दीवार पे पैनलिंग के तौर पे लगाई जाती हैं। लेकिन जब भी किसी मुस्लिम माशरे में इम्तिहान का वक्त आता है तो ये बिल्कुल बेअमल, उस वक्त इनको कोई मजबूरी लगी होती है, ये उस वक्त ही शुक्र करते हैं कि बीमार हुए हैं। ये कहते हैं शुक्र है हम आज थे ही नहीं, हम पे तो किसी की नज़र ही नहीं गई, हमारी तो कोई ड्यूटी नहीं लगी, हमारा तो कोई नाम ही नहीं लिया गया, तो ये दुनिया में तो बड़ी इज्जत बनाकर मुसलमान होंगे और मुस्लिम बुक में शामिल होंगे, इनके नाम, पॉपुलेशन, और जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को जो नोट करते हैं उसमें तो इनके नाम सबसे आगे होंगे। ये इनाम लेने और देने का वक्त हो तो स्टेज पे खड़े होकर चढ़े होंगे, बल्कि इज्जत का मुकाम पाने के लिए होंगे, और जब इस्लाम की कोई तकरीब होगी तो ये पीछे की सफ़ों में से खिसक जाएंगे। ना इनको इज्तमाईयत से मोहब्बत, ना मुसलमानों के मुफादात से मोहब्बत, हाँ दीन का इनको कोई मनसब दे दो और फिर इसके बाद इनसे कुछ पूछो ना, इनको अपनी मर्जी करनी है। याद रखिए कैसे लोग ज़्यादा देर दुनिया में नहीं रहते। नबी सल्लम का साथ मिला इनको, मुझे तो रोना आ रहा है इनके हाल पे, और मैं जितनी बातें कर रही हूँ मैं उस घाटी में छुपे वो उन बदबख्त और बदनसीब मुनाफिकीन को सोच के कर रही हूँ। तबूक तक अल्लाह के बंदो तुम चले गए हो, ज़रा सोचिए, आखिर उन्होंने भी तो 300 मील किया ना तय, अब तो वापसी का सफ़र था। थोड़ा सा तो अपने आप को रहम करते अपने ऊपर, तुमने फिर वहाँ जाकर नबी पे हमला ही करना था। आस्तीन के सांप इनको कहते हैं, आखिरी वक्त तक नबी की सफ़ों में घुसे रहे, लेकिन दुनिया दुनिया दुनिया, क्योंकि आपको पता है कि खैबर की जंग के बाद से बहुत माले गनीमत आने लग गया था, और ये इस्लाम के शुरू के 2, 4, 6 साल होते हैं तंगी के, अकाउंट खाली ही होता है, किराया भी देने के पैसे नहीं है। उसके बाद देखिए तो सही क्या रेल पेल होनी है, लेकिन आप पहचाने जा चुके होंगे उस वक़्त तक। तो मुनाफिक को पता था कि अल्लाह के नबी के साथ बड़ी दुनिया की चीज़ें लग गई हैं, तो वो भी मैदान जंग में माजूर बन के सामने आते भी, अगला पारा शुरू होगा तो अब देखेंगे, ताकि कुछ माले गनीमत की को चमची को कुर्सी को मेज़ में भी दे दें। आखिर भी हम भी तो आपके साथ ही है ना। याद रखिए ऐसी चीज़ें बंदे को सिर्फ अपने लिए सुननी चाहिए, किसी दूसरे को सोचना जुर्म अजीम होगा इस वक्त मेरे समेत, अगर मैंने ये जुर्म किया तो। अल्लाह का दीन आपको मुझे अपनी इसलाह के लिए लेना है, ना कि दूसरों के ऊपर तनकीद के लिए लेना है। अब आगे आखिरी आयतों में से एक आयत पारे की, मैं तो जब भी ये आयतें पढ़ती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह हम तो सोचते हैं दौर में सारे कितने अच्छे थे, हाय मैं नबी के दौर में होती, कभी ना तो मैं किससे पढ़ा करें, होता मैं सगे मदीना, नऊज़ुबिल्लाह। शायर कहता कि मैं मदीना में रहने वाला कुत्ता होता, अल्लाह ने मुझे इंसान बना के डबो दिया, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन शुक्र करिए हम उस दौर में नहीं थे, आज उनके जो किस्से आप और मैं पढ़ पढ़ा रहे हैं कि हमारे भी ना होते, क्योंकि दावत दीन की जिद्दोजहद जिस दौर में भी लोगों से ज़िंदगी जान माल का तकाजा करती है, ऐसे वक्त में इस्तात होने के बावजूद उजर करके बैठ रहना ये बदतरीन जुर्म है। ये तो ऐसे ही कि आपके पास पैसे हैं और आपके साथ वाला पैसे ना होने की वजह से मर रहा है और आप उसको नहीं देते, आपके पास इंजेक्शन मौजूद है जिससे उसकी जान बचे, कोई गोली मौजूद है जो ज़ुबान के नीचे रखें तो दिल का दौरा शायद ना पड़े, और आप उसको नहीं देते। किसी भी दीन की पुकार के मुकाबले में बेहिस होना निफाक है, अल्लाह रसूल से गद्दारी के मुवाफिक है। ऐसे लोगों को अल्लाह की रहमतों में से कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके पास जो कुछ था ना उसको जब उन्होंने अल्लाह के लिए पेश ही नहीं किया तो फिर अल्लाह उनको वो क्यों पेश करे जो अल्लाह के पास है। जुमला लिखिएगा, एक जैम बनाइए, कीमत अदा किए बगैर कोई चीज़ किसी को नहीं मिलती। अब बड़े से बड़े स्टोर में चले जाएं, फ्री में 1 रुपए की कैंडी भी उठा सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब 1 रुपए की कैंडी मिलती है, नहीं उठा सकते। इनके पास जो कुछ था जब उन्होंने उसको अल्लाह के रास्ते में पेश ही नहीं किया, तो अल्लाह के पास जो कुछ है वो उनको क्यों दे, और अल्लाह के पास क्या है لله ما في السماوات وما في الأرض قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. یقین کرے جس کو اللہ کی خزانوں کی خبر ہو جائے وہ اپنے 150,00,000,000,000 2,4,6 کروڑ ڈال کے اس انفینٹ چیز میں شراکت دار بن جائے, پارٹنر, شیئر ہولڈر بن جائے. شیئرز بکتے ہیں نا, آپ کا ایک بھی شیئر ہو تو آپ شیئر ہولڈر ہو گئے. امیزون میں جی ہمارے شیئرز ہیں, ای بے میں جی شیئرز ہیں, اور فلاں میں جی کون پوچھتا ہے کتنے. آپ 1% کے مالک ہوتے ہیں, کسی بڑی انویسٹمنٹ میں 1% آپ لگا دیں, پر آپ کا نام تو آ گیا, اللہ کے ساتھ شیئر ہولڈر بنی ہے. صرف ان کو اللہ نے کل بجانا ہے جو ریئل عذر والے تھے. تبوک کے سفر میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں گئے تھے, جس میں ایک اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان غنی بھی تھے, نہیں جا سکے. اللہ کے نبی جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے کوئی راستہ نہیں طے کیا مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. تم کسی وادی میں سے نہیں گزرے, ویلی, کہ جس میں وہ بھی تمہارے ساتھ نہ ہو, وہ تمہارے ساتھ بالکل برابر کے شریک ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 4423. ان بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم. اور یہ عذر والے ہیں, یہ کون ہے جن کو نہ کر کے بھی مل گیا, اور وہ کتنے بد نصیب تھے جن کو کر کے بھی کچھ نہیں ملا. تبوک سے واپسی تک کیا پورا 300-600 کلومیٹر کر کے آئے سفر, اور ملا کیا؟ نفاق کا تمغہ. کوئی نہ سوچے کہ بہت نیکیاں کر کے ہم بچ گئے ہیں, جب تک دل کا کھوٹ نہ پورا ہو. اور اللہ بچاتا ہے, ایمان والے کی عصمت ہوتی ہے, کبھی کمی کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن اللہ اس کو جانے نہیں دیتا. تو لہٰذا اگر تو ریئل عذر ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیے. شرط ایک ہے نسخا, نسخ, آپ لفظ دیکھ لیجئے, عملی شراکت نہ کرتے ہوئے بھی قلبی شراکت کو یہاں کیا کہا گیا؟ نسخو. یہ جملہ لکھ لیجئے. کچھ لوگ ریئل میں اتنا تڑپتے ہیں, کہتے ہیں ہم کیا کریں, احسان, عدم شرکت کے باوجود کم از کم زبان سے ان کے بس میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح کرتے رہنا. اور حزن کیا ہے؟ اپنی کوتاہی پہ اتنا شدید رنج جو آنسوؤں کی صورت میں بہ نکلے. تفید من الدم, کیوں نہیں اللہ کے نبی سواری ہمارے پاس, ہم کیا کریں. اور یاد رکھیے گا کہ جب کوئی عملی زندگی میں بار بار ایسا کرتا ہے نا, تو اس کے دل سے اس چیز کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسی چیزوں کو اللہ نے یہاں مہر کا نام دیا, بے حسی کا نام دیا, توبیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. عمل کے رویے نوٹ کر لیتے ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ اپنا ڈیسیکشن کروائیے, اپنا پوسٹ مارٹم تو بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں, وہ تو بعد میں ہونا ہے. اور یاد رکھیے, جس کا نفاق ہوتا ہے نا, وہ زندگی میں نہ بھی کھلے اس کے بعد بدنام ہو جائے گا, وہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. کئی لوگ ہیں اپنی زندگی میں بڑے نیک, بلکہ حدیث کے ساتھ ان کا تعلق تھا, بعد میں کھوٹے تھے تو نکل گیا کھوٹ. جرمنی میں ایک عورت کچھ ہے 20-25 سال کے بعد جو ڈگری ملی تھی نا ڈاکٹریٹ کی, وہ واپس لے لی. ایک سال میں وہاں تھی تو یہ چرچا تھا, تو مجھے لوگوں نے سنایا کہ یہ کون عورت ہے, اس نے کوئی 25-30 سال پہلے کوئی تھیسس لکھا تھا, اس کی بنیاد پہ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی, پی ایچ ڈی. اب پروو ہوا ہے کہ اس نے خود نہیں لکھا تھا, فلاں فلاں جگہ سے کاپی کیا ہوا تھا. جرمنی کی گورنمنٹ نے اس سے وہ ڈگری واپس لے لی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا فی الامور کلھا واجرنا من حسن الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. پھر کیا سیکھا؟ کہ منافقین کو مال اور اولاد کے ذریعے سزا ملتی ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرتے ہوئے دل کو کھوٹ سے پاک کرنا ہے. مومنین کے لیے چونکہ جنت میں حسین ترین باغ ہے, اس لیے یہاں سے اس کی بکنگ کرانی ہے. دین میں پیچھے نہیں رہنا, رخصتیں نہیں مانگنی, توفیق مانگنی ہے. لکھ لیں, توفیق مانگیے, اللہ کرا لے, اللہ عذر نہ ڈالنا. یاد کیجئے پہلے دن دعا کر کے بیٹھے تھے ہم یہاں کہ اللہ پورے دورے قرآن کے دوران ایک دفعہ بھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہ آئے کہ ہم اس کا ایک لفظ بھی مس کریں, اور اللہ اگلوں میں بھی ایسا ہی رکھے. پھر اسی طرح سے فسق اور کفر سے دور رہنا ہے, نہ سمجھی میں نہیں رہنا. اور اس کے بعد آخری آیات ہے بارے کی 90-93, وجعل المعذرون من الاعراب. اللہ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے, बादिया नशीनों यानी सबर्ब्स यानी देहातों में रहने वाले आरावी बदवी कुछ भी कह लीजिए देहाती कह लें, बादिया नशीनों में से उजर वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुख्सत दी जाए और वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुँच कर रहेगी, ज़ईफ़ों यानी कमज़ोरों पर और बीमारों पर और इन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हरज नहीं यानी उनकी कोई पकड़ नहीं, बशर्ते के नसखू, नोट करिएगा, नशर्ते के वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें। ऐसे नेकुकार लोगों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, अल्लाह बड़ी मग़फ़रत वाला और रहमत वाला है। हाँ इन पर भी कोई हरज नहीं जो आपके पास आते हैं, क्या आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें? तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ नहीं पाता। राइट प्रॉब्लम। तो वो रंज गम से अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयसर नहीं। हकीकी उजर वाले लोगों पे पारा पूरा हो रहा है। बेशक इन लोगों पर तो राह इल्ज़ाम है और इन्हीं पर है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाज़त तलब करते हैं। ये खाना नशीन यानी घरों में रहने वाली औरतों का साथ देने पर खुश हैं और इनके दिलों पर मोहरे खुदाबंदी लग चुकी है जिससे वो महज बेइल्म हो गए। कहते हैं ना कि चूड़ियाँ पहन ली औरतों के साथ घरों में बैठ जाओ। इन आयात में से आयत 91 के बारे में हज़रत अनस की रिवायत है, शान नज़ूल है ये इसकी। अल्लाह के नबी एक गज़वा जिसका नाम तबूक था वहाँ गए तो आपने फरमाया कि कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे रह गए लेकिन हम किसी भी घाटी या वादी में जिहाद के लिए चलें वो सवाब में हमारे साथ हैं कि वो सिर्फ उजर की वजह से हमारे साथ नहीं आ सके। तो ये आयत कबीला मुज़ैना की शाख बनी मकरन के बारे में उतरी है। क्या पता चला नसहू। आज इस लफ्ज़ को घर जाकर भी याद कीजिएगा। खैर ख्वाह रहेंगे ना, कुछ भी ना करें अल्लाह आपको साथ रखे, सारी ज़िंदगी को कुछ ना करे उसको कभी ना वहाँ से हटाइए, शर्त एक है कि वो नसहू है। जब तक दिल में खोट नहीं होता ना तो आप किसी भी जगह के ज़िम्मेदार बने रहें, नो प्रॉब्लम, कुछ भी ना करें नसहू, दुआएं कर दें, खैर ख्वाही का दर्जा है। लेकिन अगर खैर ख्वाही निकल जाए तो फिर अल्लाह ने आपसे खुद ही छीन लेना है, आपने खुद ही छोड़ जाना है, आप लेफ्ट कर जाएंगे उस ग्रुप को। तो ये था 10वां पारा जिसको पढ़ना और पढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। अल्लाह ने आपको हौसला दिया, आप इसके साथ रहे, जुए शीर लाने से कुछ कम नहीं था। कमी बेशियों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और अपने लिए अमल के रवैये नोट कर लेते हैं। दीन इस्लाम के लिए खैर ख्वाही रखनी है, एहसान का मामला करना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने पे गमगीन होना है, अल्लाह के काम में पीछे नहीं रहना, बहाने नहीं करने और अल्लाह और रसूल से झूठ नहीं बोलना, अल्लाह के काम में पीछे नहीं रहना। और इस पूरे 10वें पारे का खुलासा जिसको इस दफ़ा हमने बहुत डिटेल से किया और पर्पसली किया, अल्लाह करे कि हमें इससे फ़ायदा हो। पूरे पारे में दो लफ्ज़ अपने लिए रख लें। पहली तरजीह सिर्फ अल्लाह की ज़ात, प्रायोरिटाइज अल्लाह सुब्हान तआला, और दूसरी अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान। अब इसको देखते हुए ज़रा सा माइंड को साथ रखिएगा, पहली नहीं चले दूसरी तरजीह कर देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी, पहली मैं खुद दूसरी अल्लाह, कबूल होगा? हज़रत उमर को अल्लाह के नबी ने क्या कहा था जब उन्होंने कहा कि आप मुझे सबसे प्यारे हैं बस अपनी जान से नहीं, तो कहा उमर नहीं। इधर अल्लाह के लिए सब के लफ्ज़ को काट दें और कुछ लिख दें, अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करना, तो क्या बच जाएंगे? क्या फिर हमारा नाम सहाबा के साथ रदी अल्लाह अन्हुम व रिदवान में होगा? नहीं। अल्लाह इससे काम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होता रदी अल्लाह अन्हुम व रिदवान कहने पे। पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान। मुहासबा कर लेते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या मेरे लिए अल्लाह और इसका दीन अहम है या मेरे वो रिश्तेदार जो मुझे अक्सर अल्लाह के रास्तों से रोकते हैं, क्या मैं अल्लाह के रास्ते के जिद्दोजहद के लिए तैयार हूँ? वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुन्न मुस्लिमात, इंशाल्लाह। 10 बारों के बाद मैंने किस किस चीज़ से हिजरत की, यानी अपनी कौन सी कमियाँ, कौन सी चीज़ें, अपनी कौन सी बुरी बातें छोड़ी। अल्लाह ताला आपको मुझे अपना मुहासबा करने वाला बनाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।